नाटक का दृश्यवाद सारांश। दृश्यवान, नेपल्स का राजा एलांजो, उसका भाई सेबास्टियन, पुत्र फर्डिनांड, मिलान का अवेंद ड्यूक एंटोनियो और दरबारी गंजालो के तथा अन्य दरबारी एक जहाज पर सवार होकर ट्यूनिस से लौट रहे हैं। जहाज समुद्री तूफान में फंस गया है और तुरंत ही चट्टानी तट पर टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाने का खतरा उनके सामने है। जहाज के सभी के आदेश पर अधिकारी नाविक समस्त सलाहों को बुलाकर काम में जुटे जाने को कहता है। वे सब जहाज को बनाने के उपाय करने में जुट जाते हैं। विकट समस्या यह है कि तूफान जहाज को तट की ओर बेहद तेजी से बहा ले जा रहा है। अगर जहाज तट के चट्टानों से टकरा गया तो उनके नष्ट होने का साथ ही उस पर सवार पर मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। मलाह सबसे ऊपर वाले पाल के नीचे करते लगते हैं कि ताकि जहाज पर तूफान का जोर कम हो जाए, लेकिन यात्री जहाज के डंक पर जा आकर उन्हें अपने अपने आदेश और उपदेश देने लगते हैं, जिसके सलाहों से कलाओं के काम रुकावट पड़ती है। अधिकारी उन्हें अपने अपने कैबिन में जाने को कहता है, किंतु कुछ दरबारी यात्री फिर ऊपर जाते हैं तो अधिकारी उन्हें वहां से चले जाने का आदेश देता है। जहाज को तट से टकरा कर नष्ट हो जाने से बचाने के लिए सलाहों जितोड़ परिषद करते हैं। ऊपर वाले पल को नीचा करने पर भी जब तूफान का प्रभाव कम नहीं होता तो मुख्य समुद्र भी नीचा कर दिया जाता है। फिर मुख्य पाल और आगे वाले पाल की सहायता से जहाज को तट से दूर समुद्र के ढकेलने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं और जहाज चट्टान तट पर टकरा जाता है। अब हड़बड़ी का दृश्य उपस्थित होता है। सलाह बुरी तरह से भीगे हुए हैं। यात्री एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। राजा और उसका पुत्र घुटना के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं। दृश्य दो, द्वीप पर प्रस्पेरो की कोठरी के सामने प्रस्पेरो और उसकी पुत्री मिरांडा बातें कर रहे हैं। मिरांडा ने जहाज को नष्ट होते देखा और उसके यात्रियों के नष्ट हो जाने के विचार से उसका हृदय करुणा से भर उठा है। उसे मालूम हो गया है कि उसके पिता ने अपने जादू के जोर से समुद्र में बहुत तूफान उठाया है। वह पिता से कहती है कि जिस तरह उसने तूफान उठाया है उसी तरह उसे शांत भी कर सकता है। प्रस्पेरो उसे शांत रहने को कहता है और विश्वास दिलाता है कि जिन यात्रियों को उसके डूबते हुए दिखाई दिया है उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुए हैं। उससे तो वो कुछ भी किया है, अपनी पुत्री मिरांडा की हित के लिए ही किया है। अब प्रस्पेरो मिरांडा को अतीत का कथा सुनाता है जिससे जहाज के नष्ट होने का संबंध है। वह बताता है कि 12 वर्ष पूर्व वह मिलान का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। वह संस्कृति एवं कलाओं के सर्वोपरि समझा जाता था। संस्कृति, कला तथा रहस्यमय विद्या के अध्ययन में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उसने अपने राज्य का संचालन अपने छोटे भाई एंटोनियो को सौंप दिया था। एंटोनियो ने उसे स्थिति का लाभ उठाकर राज्य के अधिकारियों का भ्रष्ट बना दिया और फिर नेपल्स का राजा एलांजो से मिलकर प्रस्पेरो को अपने रास्ते से हटा देने का षड्यंत्र किया। उनमें उसकी हत्या करने का साहस नहीं था क्योंकि वह अत्यधिक लोकप्रिय था, इसलिए उन्होंने उसे उसकी 3 वर्षीय बच्ची मिरांडा के साथ एक जहाज में बिठाया और दूर समुंदर में ले जाकर एक ऐसी नाव में बिठा दिया जिससे ना मस्तूल था, ना पाल थे और ना रस्से ही थे। पिता पुत्र के बीच समुंदर में किसी भी क्षण डूब जाने से मृत्यु हो सकती थी, किंतु एक भद्र व्यक्ति गंजालो ने, जिसे इस योजना का क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था, उसे गुण रूप से भोजन, शुद्ध जल, बहुमूल्य वस्त्र, पुस्तक तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर दी थी, जो उसे बहुत सहायक सिद्ध हुई और वह इस निर्जन द्वीप पर अपनी पुत्री सहित आकर बस गया। तब प्रोस्पेरो मिरांडा को जहाज के दुर्घटना के विषय के बताते हुए कहता है कि इस विचित्र दुर्घटना के कारण उसके शत्रु उस द्वीप के तट पर आ गए हैं और अब भाग्य उसके और उसकी पुत्री के हित में है। इस सुअवसर का उसे अवश्य लाभ उठाना चाहिए। यह सुनते सुनते मिरांडा प्रोस्पेरो के जादू के प्रभाव से सो जाती है। प्रोस्पेरो अपने सेवक प्रतास्मा एरियल को बुलाता है। एरियल आकर जहाज के दुर्घटना का पूरा विवरण सुनाता है, किस प्रकार उसने कभी यहाँ और कभी वहाँ एक लो जलाकर और कभी लो को दो भागों में विभाजित करके जहाज को यात्रियों से आतंक उत्पन्न किया, जिसके परिणाम रूप निराशा से भरे गए यात्री घबराकर समुद्र में कूद पड़े। एरियल ने यह भी बताया कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। उसने एलेंजो के पुत्र फर्डिनांड को समस्त यात्रियों से अलग कर दिया है और वह द्वीप के एक कोने में उठी सांस भरता हुआ निराश होकर हाथ जोड़े हुए बैठा है। शेष यात्रियों को एरियल ने विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया है। राजा का जहाज गहरी खाड़ी में सुरक्षित है। उसने नाविकों के जहाज के नीचे वाले डेक पर कंपानिया और एसो से बांध दिया है और उन्हें जादू के प्रभाव से गहरी नींद में सुला दिया है। अन्य नौकाएं जिन्हें एरियल ने अलग अलग कर दिया था अब पुनः एकत्र कर दी है और उनकी यात्री जिनमें जहाज का नष्ट होने और राजा को भी मरने दिखा था। एरियल की जादू का प्रभाव से शोक से भरे हुए नेपल्स की ओर लौट रहे हैं। पूरा विवरण सुनाकर एरियल प्रोस्पेरो से प्रार्थना करता है कि अपने वायद के अनुसार उसे मुक्त कर दें, किंतु प्रोस्पेरो कहता है कि उसकी सेवा की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर वह एरियल को उसकी पुरानी कथा की याद दिलाता है और उसे संदर्भ से अर्धमानव प्राणी केलिबन की कहानी भी सुनाता है। एरियल पहले एक दृश्य डायन सेकोराक्स का सेवक था। सेकोराक्स का जन्म एलियंस में हुआ था। उसे उसके घोर अपराध और जादू के प्रयोग के कारण एलिजियन से निकाल दिया गया था और इस द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया था। तब वह गर्भवती थी। यहाँ उसने केलिबन को जन्म दिया। एरियल सिकोराक्स के दुष्टता भरे आदेशों के पालन नहीं कर सका और उसे देवदारू के वृक्ष के तने में बंदी बना दिया गया, जिसके कारण उसने महान यातना भोगी। अब प्रोस्पेरो उस द्वीप पर आया तो उसने एरियल को वहाँ से मुक्त कराया। उसे इन बातों की याद दिलाकर प्रोस्पेरो उसे चेतावनी देता है कि वह ठीक तरह सेवा करना रहे, वरना उसकी वही हालत फिर हो जाएगी। इस पर एरियल समुचित प्रकार की उसकी सेवा करने का वादा करता है। प्रोस्पेरो भी वादा करता है कि दो दिन में उसे मुक्त कर देगा। तब वो उसे आदेश देता है कि जाकर समुंदर के अस्प्रा के रूप में परिवर्तित हो जाए किंतु उसके सेवा और किसी को दिखाई ना पड़े। अब प्रस्पिरो मिरांडा को जगाता है और उसे लेकर कैलिबन को देखने जाता है। प्रस्पिरो और कैलिबन की बातचीत से ज्ञात होता है कि प्रस्पिरो से पहले उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार किया था और अपनी कोठरी में रखा था, किंतु दुष्ट कैलिबन ने मिरांडा की इज्जत पर हमला करने की कुछ चेष्टा की थी, इसलिए प्रस्पिरो ने उसे एक चट्टान में कैद करके अपना दास बना लिया था। उससे ईंधन लाने, आग जलाने जैसे काम कराया जाता है। वह कोड़ों की मार के हर किसी को काम करता है। प्रस्पिरो ने उसे मानवा की भांति बुलाना सिखाया, किंतु उसका उपयोग वह प्रस्पिरो को कोसने ही नहीं करता है। इस समय भी वह प्रस्पिरो का श्राप देता है, किंतु प्रस्पिरो उसे धमकी देता है कि अगर काम नहीं करेगा तो वह उसकी मांस परसीय के जकड़न उत्पन्न कर देगा, उसकी हड्डियों से दर्द पैदा कर देगा। तब कैलिबन उसकी आज्ञा का पालन करता है। अदृश्य एरियल गाना गाते हुए जाता है। अपने पिता को शोक में डूबा हुआ फर्डिनेंड संगीत को सुनकर आश्चर्यचकित होता है। वह सोच में पड़ जाता है कि यह मधुर गीत कहाँ से आ रहा है जो उसे उसके डूबे हुए पिता की याद दिला रहा है। संगीत का पीछा करते हुए वह प्रस्पिरो और मिरांडा के सामने आ पहुँचता है। उसे देखकर मिरांडा के भ्रम होता है कि बहुत सुंदर रूप वाली कोई आत्मा है, किंतु प्रस्पिरो उसे बताता है कि वो मनुष्य है और अपने खोए हुए साथियों के खोजने के लिए घूम रहा है। फर्डिनेंड मिरांडा के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। मिरांडा भी पुरुष को देखा है। प्रस्पिरो इन दोनों के स्नेह भरी नजरों को देखकर प्रसन्न होता है। प्रस्पिरो वह निश्चित कर लेना चाहता है कि फर्डिनेंड वास्तव में सच्चे दिल से मिरांडा से प्रेम करता है। वह उसे नेपल्स का राजा होने के दावे की चुनौती देता है और कहता है कि वह राजद्रोही और जासूस है। फर्डिनेंड इस अपमान से जल उठता है और अपनी तलवार खींचता है, किंतु प्रस्पिरो उसे चेष्टाहीन कर देता है और वह तलवार उठाने में असमर्थ रहता है। मिरांडा पिता से प्रार्थना करती है कि उस पर इतना कठोर ना बने। प्रस्पिरो उसे चुप रहने को आदेश देता है और फर्डिनेंड के प्रति उसके आकर्षण का निरुत्साहित करता है, किंतु वह उसके प्रति अपने प्रेम की स्पष्ट घोषणा करती है। प्रस्पिरो फर्डिनेंड को अपने पीछे आने का और मिरांडा को उसके बारे में कुछ ना बोलने का आदेश देता है। अंक दूसरा। जहाज दुर्घटना से चमत्कारित रूप से जीवित बच जाने के बाद राजा एलांजो तथा उसके साथी द्वीप पर पुनः एकत्र होते हैं, किंतु उनमें से फर्डिनेंड लापता है। राजा अपने पुत्र के लिए शोकमग्न है। गंजालो उसे सांत्वना प्रदान करने का प्रयास करता है, किंतु एंटोनियो एवं सेबास्टियन उसका मजाक उड़ाते हैं। उससे उन्हें एलांजो के पुत्र शोक का तैनिक भी अनुभूति नहीं है। अब हमें ज्ञान होता है कि एलांजो ने अपनी पुत्री क्लारिवेल का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध ट्यूनिस का राजा से कर दिया था, और जब भी वो लोग ट्यूनिस से वापस आ रहे थे तभी जहाज दुर्घटना हुई। सेबास्टियन को अपने भाई से कोई सहानुभूति नहीं है और वो उसके पुत्र फर्डिनेंड की मृत्यु के लिए स्वयं उसे ही उत्तरदायी ठहराता है। सेबास्टियन का मत है कि विवाह का यहाँ श्रमेला नहीं हुआ होता तो फर्डिनेंड जीवित होता। गंजालो एक आदर्श राष्ट्रकुल की योजना का प्रतियादन करने पूर्ण राजा का ध्यान पुत्र शोक से हटाने की प्रयत्न करता है, लेकिन एंटोनियो एवं सेबास्टियन पुनः उस पर व्यंग करते हैं। स्वयं राजा भी गंजालो के लगातार बोलते रहने से ऊब उठता है और प्रार्थना करता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उसी क्षण एरियल और जो अदृश्य है पवित्र संगीत की ध्वनि करते हुए प्रवेश करता है। परिणाम स्वरूप एंटोनियो और सेबास्टियन के अतिरिक्त शेष सभी सो जाते हैं। एंटोनियो चालाकी और चतुराई से सेबास्टियन में राजा बनने की महत्वाकांक्षा जागृत करके एलांजो की हत्या की सुख्याव कर देता है। सेबास्टियन कुछ हिचकिचाहट के बाद उसकी बात मान लेता है। यह निश्चित किया जाता है कि सोए हुए राजा के साथ ही गंजालो को भी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें भय कि गंजालो मुसीबत खड़ी कर देगा। अब वे राजा तथा गंजालो की हत्या करने के अपनी अपनी तलवार खींचते हैं। तभी अदृश्य एरियल गंजालो को जगा देता है। उसकी तुरंत बाद राजा भी जाग जाता है। वो दोनों एंटोनियो तथा सेबास्टियन को तलवार खींचे हुए देखकर अचरज करते हैं। सेबास्टियन उनकी इस स्थिति के लिए सफाई के तौर पर एक कहानी गढ़ लेता है। दृश्य 2। यह एक हास्य प्रसंग है जो षड्यंत्र के दृश्य के तनाव को दूर करता है। कैलिबान दिखाई पड़ता है। वो नाटक के विदूषक ट्रिंकुलो के आते हुए देखता है, जो जहाज दुर्घटना के सबके साथ जीवित बच गया था। कैलिबान समझता है कि वो प्रस्पेरो द्वारा उसका उत्पीड़न करने की भेजी गई प्रेतात्मा है। वो समझकर वो भूमि पर लेट जाता है ताकि प्रेतात्मा को दिखाई ना पड़ सके। उसी समय आंधी आती है। ट्रिंकुलो को आंधी से बचने का कोई रक्षण स्थल दिखाई नहीं पड़ता, है। आशीषाकर बहु लेटे हुए कैलिबान पर निकट आता है और समझाता है कि वो द्वीप का कोई जंगली है जो मेघ गर्जन से बेहोश हो गए है। ट्रिंकुलो आंधी से बचने के लिए कैलिबान को लवादे के नीचे छुप जाता है। अब एक शराबी रसोईया स्टीफेनो वह आता है। वो भी जहाज दुर्घटना में जीवित बच गया था। वह एक विचित्र आकृति वहाँ पड़ी हुई देखता है, जिसके दो मुंह और दो जोड़ी टांगे हैं। वो दोनों मुंह में शराब उलझता है। अब अपना नाम पुकारा हुआ सुनकर आश्चर्य होता है। आखिरकार स्टीफेनो और ट्रिंकुलो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। स्टीफेनो उसे टांग पकड़कर खींच लेता है। कैलिबान ने पहली बार शराब चखी है, उसे अपार आनंद होता है। वो स्टीफेनो के एक देवता की भक्ति पूजा करने के तैयार है और उसका विश्वास पात्र बना रहने की कसम खाता है। ट्रिंकुलो को कैलिबान से भारी घृणा होती है। कैलिबान को बराबर शराब पिलाई जाती है। वह स्टीफेनो के हर प्रकार की सेवा करने का वादा करता है। वह प्रोस्पेरो के पीठ छुड़ा लेने की निश्चित करके खुशी से उलझते हुए गाता है। अंक 3। प्रोस्पेरो के कोठरी के सामने फर्डिनांड लकड़ी का एक लट्ठा लिए हुए आता है। उसे प्रोस्पेरो ना यह निम्न श्रेणी का कार्य सौंपा है जो उसे पसंद नहीं है। वह इस कार्य से घृणा करता है, फिर भी मिरांडा के प्यार की खातिर वो इसकी चिंता नहीं करता, बल्कि उससे इस विचार से आनंद है कि प्राप्ति होती है कि नीरा मिरांडा की उससे इसका से सहानुभूति है। मिरांडा वो अनुमान करके कि उसका पिता अपने अध्ययन में यह व्यस्त है, चुपके से वो वहाँ आ जाती है, किंतु परस्पर अदृश्य रूप में कुछ दूरी पर है और उन्हें देख रहा है। मिरांडा फर्डिनांड से आराम करने को कहती है और स्वयं लट्ठी ले जाने को तैयार हो जाती है, किंतु फर्डिनांड उसे मना करता है। वो अपनी प्रेमिका को यह कठिन कार्य कदापि नहीं करने देगा। मिरांडा को जीवंत सहानुभूति और संगीत से फर्डिनांड में स्फूर्ति का संचार होता है। फर्डिनांड और मिरांडा की बातचीत में स्पष्ट होता हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं। फर्डिनांड स्वीकार करता है कि उनके महिलाओं से उसका परिचय हुआ था अनेक महिलाओं से उसका परिचय हुआ था और उनमें कुछ ने उससे अपनी मधुर वाणी द्वारा मोहित भी किया है, किंतु कोई भी मिरांडा की बराबरी नहीं कर सकती। मिरांडा तो वास्तव में स्त्रियों से सर्वोपरि है। वह उसे यह भी बताता है कि वह एक राजकुमार है और उसके प्रति अपने प्रेम और भक्ति की शपथ लेता है। मिरांडा उसकी पवित्र प्रेम प्रतिज्ञा सुनकर हर्षित होती है और प्रसन्नता की अधिकता से उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। मिरांडा स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि वो उससे विवाह कर लेते तो उसकी पत्नी बनकर रहेगी, अथवा यदि वो उससे पत्नी की तरह प्रेम नहीं करे तो जीवन भर उसकी दासी बनकर रहेगी। फर्डिनांड उसके सामने घुटने टेककर अपने प्रेम का पुनः वचन देता है और उसकी पुष्टि के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। मिरांडा भी अपना हाथ बढ़ाकर प्रतिज्ञा करती है। तब दोनों विदा लेकर अलग अलग चल जाते हैं। यह सब देख सुनकर प्रस्पेरो हृदय प्रसन्नता से फूल उठता है। दृश्य दो, द्वीप के अन्य भाग पर कैलिबान स्टीफानो और ट्रिंकुलो बातें कर रहे हैं। अदृश्य एरियल वहाँ आता है। कैलिबान अपने स्वामी प्रस्पेरो की निंदा करके सुझाव देता है कि यदि स्टीफानो उसकी हत्या कर दे तो वो इस द्वीप का स्वामी हो जाएगा और कैलिबान उसकी सेवा करना चाहे करता रहेगा। तीनों शराब के नशे में गूंद है, किंतु कैलिबान होशो आवास में है। बीच बीच में अदृश्य एरियल कैलिबान को बातों का खंडन करते उसे चिढ़ाता है, किंतु कैलिबान तथा स्टीफानो समझते हैं कि बीच में बातें काटने वाला ट्रिंकुलो है और स्टीफानो उसे पीड़ता है। कैलिबान प्रस्पेरो को हत्या की योजना पूरे विवरण के साथ बताता है। वो उनकी पुत्री मिरांडा के बारे में भी बताता है। स्टीफानो प्रस्पेरो की हत्या करके द्वीप का राजा बनने और मिरांडा को अपनी रानी बनाने का ख्याल से एकदम खुश हो जाता है और गाने लगता है। एरियल उस गाने की धुन ढोलक और बांसुरी पर बजाता है। अदृश्य संगीत सुनकर स्टीफानो आश्चर्यचकित होता है। कैलिबान बताता है कि वो द्वीप पर इस प्रकार का संगीत सुनने का अभ्यस्त है। इस संगीत ने कई बार उसे नींद से जगा दिया है और कई बार मीठी नींद में सुला दिया है। वो सब अदृश्य संगीत का पीछा करते हैं। अलंजो सेबास्टियन एंटोनियो गोंजालो तथा अन्य द्वीप पर भटकते थककर द्वीप पर अन्य भाग पर रुककर बातें कर रहे हैं। एंजालो अपने पुत्र फर्डिनांड के जीवित होने की समस्त आशाएं योग चुका है। उसे पूरा विश्वास हो गया है कि वह दुर्घटना के समय समुद्र में डूब गया और अब सदा के लिए उससे बिछूत हो गया। सेबास्टियन और एंटोनियो अलग एक और बातें करते हैं और एलांजो ई तथा गंजालो की हत्या उसी रात कर देने की निश्चित करते हैं, क्योंकि सभी थककर चूर है और सभी गहरी नींद सोएंगे, इसलिए सेबास्टियन तथा एंटोनिया का कार्य सरल हो जाएगा। अचानक वायुमंडल में विचित्र और पवित्र संगीत उत्पन्न होता है, जिससे सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रॉस्पेरो अदृश्य रूप से ऊपर से प्रवेश करता है, नीचे से बहुत सी अद्भुत आकृतियों भोज सामग्री लिए वे प्रवेश करती है। वे भोज सामग्री मेज पर सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करते हुए झुक झुक कर अभिवादन करती है। तब राजा तथा उसके साथियों ने भोज के लिए आमंत्रित करके चली जाती है। सब लोग डरते डरते भोजन करने के तैयार होते हैं। तभी बिजली की गरज के साथ तूफान उड़ता है और एरियल वाज के रूप में आकर खाने की मेज पर उसके विशाल पंख फड़फड़ाता है। भोजन सामग्री गायब हो जाती है। तब एरियल अदृश्य रहते हुए एंजालो सेबास्टियन तथा एंटोनियो की भर्त्सना करता है। वह उन्हें प्रॉस्पेरो के विरुद्ध किए गए उनकी अपराधों की याद दिलाता है और उनके विनाश के प्रति सावधान करता है, जो शीघ्र होने वाला है। किंतु वह कहता है कि पश्चाताप करके भी अपना विनाश टाल सकते हैं। यह कहकर एरियल बिजली की गरज में गायब हो जाता है। तभी मधुर और संत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दैवी आकृतियाँ पुनः प्रवेश करती है और नृत्य करते हुए राजा तथा उसके साथियों का मुंह बनाकर चिढ़ाती है। फिर भोजन की मेज को लेकर भाग जाती है। एलांजो कल्पना करता है कि समुद्र के लहरों, हवाओं और तड़ित गर्जन ने प्रस्पेरो का नाम लिया है और उसके एलांजो के अपराध का भर्त्सना करते हैं। तब उस विश्वास हो गया है कि उसी का द्वारा प्रॉस्पेरो विरुद्ध किए गए अपराधों के कारण उसका पुत्र फर्डिनेंड डूबा है और सागर के तल पर मरा पड़ा है। तब वो भी डूबकर उसके साथ जा पड़ेगा। एलांजो के साथ भी सेबास्टियन तथा एंटोनियो भी हताशा की स्थिति में हैं और पागलों की तरह दौड़ जाते हैं। गोंजालो जो शांत चित्त है, एंटोनियो एडियन फ्रांसिस्को तथा अन्य की उनके पीछे भेजता है, ताकि वो भी अव्यवस्था में कोई गलत काम ना कर बैठे। अंक चौथा, दुश्मन फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो को परीक्षा में खरा उतरा है। प्रॉस्पेरो उसके सच्चे प्रेम से आवश्यकता है। वो औपचारिक रूप से अपनी पुत्री मिरांडा के सगाई उससे कर देता है, किंतु वो उसे सचेत करता है कि विधिवत विवाह से पूर्व प्रेम की पवित्रता बनाए रखें। फर्डिनेंड उसकी शपथ लेता है। अब प्रॉस्पेरो एरियल को बुलाकर आदेश देता है कि अपने साथी प्रेतात्मा को लाकर उसकी सहायता से प्रेमी युगल का मनोरंजन करे, ताकि वह उन्हें अपने जादू का चमकदार दिखाने का वादा पूरा कर सके। प्रेतात्मान फर्डिनेंड तथा मिरांडा के सगाई के उपलक्ष्य में मधुर संगीत के साथ में मनोरंजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आयरिस का आह्वान करती है ताकि सच्चे प्रेम का अनुबंध पर हर्ष मनाया जाए। सीरिस यह जानकर प्रसन्न है और विनस और उसका पुत्र वहां नहीं होंगे, क्योंकि उसकी पुत्र का अपहरण के बाद वो उनका साथ टालती रही है। तुरंत ही जुमा में प्रकट होती है। वह प्रेमी युगल के प्रतिष्ठा, समृद्धि और दीर्घ दर्पण्य जीवन की योग भोगने की आशीर्वाद देती है। श्री से आशीर्वाद देती है कि भूमि सभी पदार्थों की अब अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करे, उनके भंडार सदैव अर्न लताओं अंगूरों और वृक्ष फलों से भरे, उन्हें और किसी चीज की कमी ना रहे। फर्डिनेंड इस दृश्य से सराहना करता है। उसके बाद आयरिस जल परियों को बुलाती है और उनसे नृत्य करने की कहती है। इसके साथ ही यह कृषकों के भी बुलाती है। अपने सिरों पर घास के टोप पहने हुए किसानों जल परियों के नृत्य में सम्मिलित होते हैं। अचानक प्रस्पेरो की उसकी हत्या की षड्यंत्र का ध्यान आ जाता है तो वह चौंक पड़ता है। वो आत्माओं से चले जाने को कहता है। उसे बेहद परेशान देखकर फर्डिनेंड एवं मिरांडा चिंतित होते हैं। उसे चिंतित देखकर प्रस्पेरो उन्हें आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्माओं के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए वह कहता है कि जिस प्रकार यह प्रदर्शन माया भी है, उस प्रकार गगनचुंबी मीनार, भव्य भवन, पवित्र पूजा स्थल, यहाँ तक कि पृथ्वी भी माया जल है। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा और इनका चिन्ह भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्य मर्त्य है। फिर प्रस्पेरो उन्हें कोठरी में जाकर आराम करने को कहता है। अब प्रस्पेरो एरियल को बुलाकर पूछता है कि उसकी हत्या की षड्यंत्रकारियों को उसने कहाँ छोड़ा। एरियल बताता है कि उसने कैलिबान तथा उसके दो सहयोगियों के साथ क्या चाल चली। वे मदीरा के नस में मस्त थे, फिर भी अपनी योजना को कभी नहीं भूले। उन पर एरियल के संगीत का इतना गंभीर प्रभाव हुआ कि काटदार पड़ियों पर पौधे होकर कांटों की परवाह ना करते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। अन्य में भी एरियल को संगीत का पीछा करते हुए प्रस्पेरो ने कोठरी को दूसरे ओर गंदे बदबूदार तालाब के कुड़ पर अब उसमें भी नाच रहे हैं। प्रस्पेरो के कहने पर एरियल उसकी एक भड़कीली पोशाक लाकर अरग्नि पर दाग देता है। प्रस्पेरो तथा एरियल अदृश्य रहते हैं। कैलिबान, स्टेपानो और ट्रिंकुलो भीगे हुए आते हैं। पोशाक पर सबसे पहले ट्रिंकुलो की नज़र पड़ती है और वह अपने साथियों को उसे दिखाता है। वे पोशाक प्राप्त करने पर विवाद करने में समय नष्ट करते हैं, जबकि कैलिबान को पहले हत्या करने के उत्सुकता है, किंतु स्टेपानो उसे पोशाक लाने का आदेश देता है। अचानक अनेक आत्माएं कुत्ते और शिकारी कुत्ते के रूप में आते हैं। अदृश्य प्रस्पेरो तथा एरियल उन्हें कैलिबान, स्टेपानो और ट्रिंकुले के ऊपर छोड़ता है। वे डर कर भागते हैं। अंक पांचवा दृश्य। प्रस्पेरो की कोठरी के सामने प्रस्पेरो और एरियल वार्तालाप कर रहे हैं। एरियल बताता है कि अपने राजा और उसके साथियों को नींबू वाले बगीचे में एक ही स्थान पर सीमित कर दिया है। वह सब प्रस्पेरो के जादू के प्रभाव से होकर अपने पापों की शोक मना रहे हैं। प्रस्पेरो एरियल को उन्हें उसके पास ले जाने के आदेश देता है। प्रस्पेरो अब जादू की योग देने की तैयार है। उससे पहले वो पहाड़ियों, बहते हुए झरनों, खिलों के शांत जल तथा वृक्षों पर विहार करने वाली आत्माओं को संबोधित करता है, जिनकी सहायता से अब तक वह प्रकृति पर नियंत्रण करता रहा है। यह शपथपूर्वक प्रतीता करता है कि जब अपनी जादू की झंडी को तोड़ देगा और जमीन पर बहुत गहराई तक गाड़ देगा, अपनी जादू की पुस्तक और समुन्दर भी इतनी गहराई तक डूबो देगा जहाँ से आवाज़ भी ना आ सके। एरियल एलांजो, एंटोनियो और सेबास्टियन को लेकर आता है। प्रस्पेरो उनका बेहदवासी से हालत से फिर होशो आवास में लाने के लिए पवित्र संगीत उत्पन्न करने की अपने जादू का आखिरी बार प्रयोग करता है। पहले वो गंजालो को संबोधित करता है और उसकी वफादारी की प्रशंसा करता है। तब वह अलांजो की उसके द्वारा उसके तथा उसकी पुत्र के साथ किए गए दुर्व्यवहार की याद दिलाता है। फिर वो एंटोनियो और सेबास्टियन द्वारा उनके राजा की हत्या करने का षड्यंत्र का उल्लेख करता है, किंतु वो शीघ्र ही उन सब का क्षमा कर देता है। वो अभी तक प्रस्पेरो को पहचान नहीं पा रहे हैं। तब प्रस्पेरो अपनी जादुई पोशाक के बदल कर मिलान कर ड्यूक की अपनी पुरानी पोशाक में पहनता है। तब उसे पहचान कर एलेंजो उससे क्षमा याचना करता है और वादा करता है कि उससे फिर से मिलान का ड्यूक बना देगा। प्रस्पेरो एंटोनियो और सेबास्टियन का को मामूली चेतावनी देकर छोड़ देता है। वो एंटोनियो को अपना राज्य वापस मांगता है। अब प्रस्पेरो एंजेलो को अपनी कोठरी तक ले जाता है। वहाँ फर्डिनांड और मिरांडा शतरंज खेल रहे हैं। अपने पुत्र को जीवित देखकर एलेंजो को विषय मुक्त हर्ष होता है। फर्डिनांड अपने पिता को अपनी मंगेतर मिरांडा से परिचय देता है और घुटना के बल बैठकर उसका आशीर्वाद मांगता है। एलेंजो का विश्वास प्रत्यक्ष क्षण बढ़ता जा रहा है। प्रस्पेरो वादा करता है कि बाद में उसकी जिज्ञासा को शांत करेगा। एलेंजो फर्डिनांड और मिरांडा को आशीर्वाद देते हैं। एरियल जहाज के मालिक और अधिकारी को लेकर आता है। गंजालो के पूछने पर वो बताते हैं कि उन्हें विचित्र अनुभव हुआ। अपने राजा उसके साथियों के जीवित पाकर उन्हें हर्ष हुआ है। उनका जहाज जिससे केवल 3 घंटे पहले नष्ट मान लिया गया था, पूर्ण रूप से वो सुरक्षित है और उसी अवस्था में सुसज्जित है जिस प्रकार वो उनकी यात्रा से प्रारंभ में था। एलेंजो फिर अभिभूत होकर पूछता है कि वो वहाँ तक किस प्रकार आए। जहाज के अधिकारी बताता है कि जहाज में वे सब गहरी नींद में सो गए थे, इसलिए क्या हुआ यह नहीं जानते। कुछ देर पहले भी आश्चर्यजनक आवाज, भयानक दहाड़ और चीखने चिल्लाने जंजीरों से गिनगिनाता सुनकर जाग गए और उन्होंने जहाज को सुरक्षित एवं सुसज्जित अवस्था में पाया। जहाज का शांति खुशी का नाच उठा। तब वो दोनों अर्थ चेतन व्यवस्था में ही वहाँ आ गए। अंत से एरियल कैलिबान स्टिपानो और ट्रिंकुलो को लाता है। एलेंजो अपने शराबी समझाए और विदूषक का तुरंत पहचान लेता है। कैलिबान को विस्मय हो से देखा जाता है। प्रस्पेरो संक्षेप से कैलिबान की कथा सुनाता है और उसके दोनों साथियों उसका हत्या करने के उनकी षड्यंत्र का भेद भी खोलता है। कैलिबान अपनी गलती महसूस करता है और प्रस्पेरो से क्षमा याचना करता है। इसके बाद प्रस्पेरो एलेंजो अपनी कोठरी में रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है और कैलिबान को आदेश देता है कि उनके स्वागत के लिए कोठरी के साफ सुथरा करे। फिर प्रस्पेरो एरियल से कहता है कि उनकी नेपल्स को वापसी जाने की सुरक्षा की व्यवस्था करे और वादा करता है कि उसके बाद उसे अपनी दासता से मुक्त कर दिया। प्रस्पेरो सबके साथ नेपल्स लौट जाने की तैयारी करता है। उपसंहार। नाटक के उपसंहार ही नाटककार शेक्सपियर प्रस्पेरो की मुख से दर्शकों से क्षमा याचना करता है। प्रस्पेरो कहता है कि उसने जादू का पूर्ण रूप से योग दिया है। अब उसे दर्शकों द्वारा तालियों बजाकर विदा दी जानी चाहिए और उनकी प्रशंसा पात्र होने चाहिए। दर्शकों की प्रार्थना द्वारा ही ईश्वर उसके जादुई कार्य के लिए उसकी आत्मा को क्षमा करेंगे। जादूगर का दुख से अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए दूसरा की प्रार्थना ही आवश्यकता होती है।